राधा माधव कुंज बिहारी,
Nitai Gaur Hari Jaya, Nitai Gaur Hari, Nitai
परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतहस्तिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री निताय गौर हरि की जय। श्री श्री गोपाल हलधर की जय। श्री श्री राधा गोकुलेश्वर की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। अक्षय हरे कृष्णा कसा आहेस? बरं वाटतं परत गोकुल धाममध्ये येऊन? आठवण आली का?
खूप आठवण आली,
खूप आठवण आली। भक्ती अक्षय आहे ना? हा पण चाललंय ना व्यवस्थित? हा सोनार गौर हरी प्रभू कसा आहे? एकदम छान। तबियत ठीक? तबियत ठीक? सगळ्यांची तब्येत ठीक आहे ना? हा भक्ति भी सब ठीक चल रही है सबके? वैभव हरे राम प्रभु ठीक ठाक? सचिव पुत्र राजेश्वर प्रभु सब ठीक है ना? हरि बोल देव कीर्तनाय प्रभु। हरि बोल कसा आहेस? किती बरा?
खूप बरा।
छान आहेस? तीन हफ्ता हो गया आया नहीं, दो हफ्ते नहीं आ सका। ऐसे लग रहा था जैसे प्राणवायु नहीं है, लेकिन आप सबका संग भी फिर से प्राप्त हो गया। सब लोग ठीक है ना? बाकी और अभी तो नहीं है, सब किचन में है अभी। खेती में गए ये सब इधर ही सुनाई पड़ता। कौवा इधर भी आ जाता है। ये कौवा नहीं,
ये पक्षी, ये कुछ पक्षी कुकुर को मां बोलते
हैं, जंगली कबूतर।
दो दो पक्षी का आवाज आ रहा है ऐसे लिखा गया है शायद चैतन्य चरितामृत में, भक्ति रसामृत सिंधु में, कि भगवान कृष्ण को पक्षियों का भाषा भी मालूम। उनका भी भाषा है ना, ये हमको समझ में नहीं आता है, लेकिन वो अपनी भाषा में बोल रहे हैं ना कुछ तो। क्लास में जाओ, क्लास में जाओ, टाइम हो गया, मंगल आरती उठो, कुछ तो बोल रहे हैं वो भी, हमको समझ में नहीं आता है, लेकिन है ना भाषा। हाँ हरे कृष्णा, कुछ तो है ना भाषा बराबर उनका है कि नहीं? ठीक है। Thank you. ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय
नारायणं नमस्कृत्य
नारायणं नमस्कृत्य
नरं चैव नरोत्तमं
नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं
देवीं सरस्वतीं व्यासं
ततो जयमुदीरये
ततो जयमुदीरये
नष्टप्रायेष्व भद्रेषु
नष्टप्रायेष्व भद्रेषु
नित्यं भागवत सेवया
नित्यं भागवत सेवया
भगवत्युत्तमश्लोके
भगवत्युत्तमश्लोके
भक्तिर्भवति नैष्ठिकी
भक्तिर्भवति नैष्ठिकी
ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम चौथा स्कंद 13वां अध्याय 22वां श्लोक किम
किम
वा अम्हः
अम्हः
वेने
वेने
उद्दिश्य
उद्दिश्य
ब्रह्मा
ब्रह्मा
दण्डं
दण्डं
अयुयुजन् अयुयुजन्
अयुयुजन्
दण्ड
दण्ड
व्रत
व्रत
धरे
धरे
राज्ञे
राज्ञे
मुनयः
मुनयः
धर्मा
धर्मा
कोविदाः
कोविदाः
किं वा महोवेन उद्दिश्य
किं वा महोवेन उद्दिश्य
ब्रह्मदण्डं अयुयुजन्
ब्रह्मदण्डं अयुयुजन्
दण्डव्रतधरे राज्ञे
दण्डव्रतधरे राज्ञे
मुनयो धर्मकोविदाः
मुनयो धर्मकोविदाः
किं वा महोवेन उद्दिश्य
किं वा महोवेन उद्दिश्य
ब्रह्मदण्डं अयुयुजन्
ब्रह्मदण्डं अयुयुजन्
दण्डव्रतधरे राज्ञे
दण्डव्रतधरे राज्ञे
मुनयो धर्मकोविदाः
मुनयो धर्मकोविदाः
किं वा महोवेन उद्दिश्य
किं वा महोवेन उद्दिश्य
ब्रह्मदण्डं अयुयुजन्
ब्रह्मदण्डं अयुयुजन्
दण्डव्रतधरे राज्ञे
दण्डव्रतधरे राज्ञे
मुनयो धर्मकोविदाः
मुनयो धर्मकोविदाः
किं वा महोवेन उद्दिश्य
किं वा महोवेन उद्दिश्य
ब्रह्मदण्डमयुयुजन्
ब्रह्मदण्डमयुयुजन्
दण्डव्रतधरे राज्ञे
दण्डव्रतधरे राज्ञे
मुनयो धर्मकोविदाः
मुनयो धर्मकोविदाः
किं वा महोवेन उद्दिश्य
किं वा महोवेन उद्दिश्य
ब्रह्मदण्डमयुयुजन्
ब्रह्मदण्डमयुयुजन्
दण्डव्रतधरे राज्ञे
दण्डव्रतधरे राज्ञे
मुनयो धर्मकोविदाः
मुनयो धर्मकोविदाः
किं वा होवेन उद्दिश्य
किं वा होवेन उद्दिश्य
ब्रह्मदण्डम् अयुयुजन्
ब्रह्मदण्डम् अयुयुजन्
दण्डव्रतधरे राज्ञे
दण्डव्रतधरे राज्ञे
मुनयो धर्मकोविदाः
मुनयो धर्मकोविदाः
किं
किं
क्यों
क्यों
वा
वा
भी
भी
अम्हः
अम्हः
पाप
कर्म
वेने
वेने
वेन को
उद्दिश्य
उद्दिश्य
देख कर
ब्रह्मदण्डम
ब्रह्मदण्डम
ब्राह्मण का शाप
ब्राह्मण का शाप
अयुयुजन्
अयुयुजन्
दण्डित करना चाहा
दण्डित करना चाहा दण्ड व्रत धरे
जो दंड के झंडे को धारण करता है
जो दंड के झंडे को
झंडे को क्षमा कीजिए दंड के डंडे को, दंड के डंडे को,
दंड के
डंडे को धारण करता है,
दंड के डंडे को धारण करता है।
राज्ञी
राजा को,
मुनयः
मुनिगण
धर्म कोविदाः, धर्म से पूरी तरह ज्ञात, विदुर ने आगे पूछा कि महान धर्मात्मा ऋषियों ने राजा वेन को, जो स्वयं दंड देने वाले, दंड को धारण करने वाला था, क्यों कर शाप देना चाहा और इस प्रकार उसे सबसे बड़ा दंड ब्रह्म शाप दे डाला। तात्पर्य, ऐसा ज्ञात है कि राजा हरेक को दंड दे सकता है, किंतु इस प्रसंग में प्रतीत होता है कि ऋषियों ने उल्टे राजा को दंडित किया। अवश्य ही राजा ने कुछ गंभीर कार्य किया होगा, अन्यथा ऋषियों ने, जिनसे अत्यधिक सहिष्णु होने की अपेक्षा की जाती है, धार्मिक चेतना में अग्रसर होने पर भी क्यों दंडित किया। यह भी प्रतीत होता है कि राजा ब्राह्मण संस्कृति से पृथक सत्ता नहीं रखता है। राजा के ऊपर ब्राह्मणों का नियंत्रण रहता था और आवश्यकता पड़ने पर वे राजा को किसी हथियार से नहीं वरन ब्रह्मशाप के मंत्र से पदच्युत कर सकते थे या उसका वध कर सकते थे। ब्राह्मण इतने शक्तिशाली थे कि उनके शाप से लोग तुरंत मर जाते थे। श्री नित्य गौर हरि की जय। अनुवाद दोहराइए। विदुर ने आगे पूछा कि महान धर्मात्मा
ऋषियों ने
राजा वेन को जो स्वयं दंड देने वाले
दंड को
धारण करने वाला था क्यों कर
शाप देना चाहा
और इस प्रकार
उसे
सबसे बड़ा दंड ब्रह्म शाप दे डाला। ओम अज्ञानतिमिरान्तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेषशुभवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा ये दंड भूमि है, ये मतलब गोकुलधाम ने समस्त भौतिक सृष्टि ये दंड भूमि है, दंड क्षेत्र। क्यों दंड क्षेत्र है संपूर्ण भूमि, संपूर्ण विश्व? दंड का क्षेत्र क्यों है?
भगवान को त्याग दिया।
हाँ, किस प्रकार से ये दंड क्षेत्र है? हम ऐसे क्यों कह रहे हैं? कि संपूर्ण सृष्टि दंड क्षेत्र है,
हर जीव यहाँ पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि को भोगता
है। हर जीव यहाँ पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दंड को भोगता है, ये जन्म मृत्यु बुढ़ापा इत्यादि ये सब दंड हैं जो ऐसे जीव को जिए जाते हैं जो भगवान से स्वतंत्र होकर भोग करना चाहता है। अच्छा ये बताइए कि कारागृह में जेल में कौन होते हैं? हाँ कैदी गुनहगार होते हैं ना, जिसने कोई गुनाह किया होता है, अर्थात किसी नियम का कायदे कानून का उल्लंघन किया होता है, तो उसे पुरस्कार के रूप में जेल भेजा जाता है क्या?
दंड के रूप,
दंड के रूप में भेजा जाता है, पुरस्कार के रूप में नहीं भेजा जाता है। उसी प्रकार जो जीव यहाँ भेजे जाते हैं भौतिक सृष्टि में, उनको पुरस्कार के रूप में भेजा जाता है? नहीं, फिर किस रूप से?
दंड के रूप,
दंड के रूप से। अब ये बताइए कि दंड देने का उद्देश्य क्या होता है?
ठीक करना।
हाँ
सुधार करना।
किस चीज को सुधार करना?
जो उसने गुनाह किया है,
गुनाह जो किया सो किया, वो खत्म हो गया गुनाह। अभी गुनाह को तो सुधारा नहीं जा सकता,
गुनाह करने की
जैसे किसी ने किसी को खून कर दिया, अभी वो गुनाह को ठीक नहीं किया जा सकता क्योंकि वो आदमी मर गया, फिर उसको अभी क्यों भेज रहे हो, क्यों दंड दे रहे हो उसको?
वो जो नियम को ब्रेक किया
हाँ,
उसको वापस उसको पालन करने के लिए उसको ये अब वो जो भी अभी वो नियम को उनको फॉलो नहीं किया इसलिए उसको जेल में डाला अभी, ताकि वो नेक्स्ट आने के बाद वो नियम को ठीक तरह से पालन करे।
ठीक है, सबसे जरूरी बात यह है दंड देने का कि उसके अंदर जो वो गुनाह करने की प्रवृत्ति है वो खत्म हो जाए, क्योंकि दंड देने से व्यक्ति को कष्ट होता है, दुख होता है, कठिनाई होती है, तो उस कठिनाई का अनुभव करते समय व्यक्ति सोचे अरे काय केलो मी काय केला नाता आनी करना नहीं और नहीं करूँगा अभी। हाँ कभी कभी मंदिर के सामने भगवान के सामने आके ऐसे लोग करते देखा ना, फिर वो हरि बोल हरे कृष्णा, फिर वो बैठक वगैरह करते हैं, देखा है आपने कभी? ऐसे ऐसे करके फिर जीभ भी बाहर लाते हैं, ऐसे ऐसे करके बैठते हैं, खूब भारी चुक के लिए, भारी चुक के लिए क्षमा करा क्षमा करा, पर बाहर जाऊँ परत ते चुक करे। तो जब दंड मिलने का सबसे प्रमुख उद्देश्य होता है कि जो गुनाह जो किया है जिसके वजह से उसको दंड मिल रहा है, वो गुनाह करने की प्रवृत्ति उसके अंदर से निकल जाए। प्रवृत्ति कब निकलती है? जब तौबा तौबा हो जाता है कि अरे रे 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 क्या हो क्या, कितना कष्ट, इतना ये सही करने के लिए मुझे ये दंड मिला, तो कितना बुरा काम मैंने किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ा गलती मैंने किया, ऐसा आगे नहीं करना चाहिए। कम से कम दंड के डर से तो वो नहीं करेगा पुनः आगे चल के। दूसरी बात कि अन्यों को एक संदेश मिले, क्या संदेश मिले कि देखो उसने ऐसा दंड किया तो उसको गुनाह किया उसको ऐसे दंड मिलेगा, तुम भी करोगे तो तुमको भी दंड मिलेगा, सावधान। ताकि अन्य लोग जो गुनहगार इस समय नहीं है परंतु उनको एक चेतावनी दी जाती है कि आप नहीं करना, ऐसे ऐसे करने से आपको भी दंड मिलेगा, है कि नहीं? तो एक इसको क्या बोलते हैं, आगे चल के एक रुकावट उसके मन में पैदा करने के लिए कि आप भविष्य में ऐसे कोई नहीं करेगा, ना तो वो व्यक्ति करेगा ना दूसरे व्यक्ति करेंगे, इसलिए दंड दिया जाता है। और फिर ऐसे वहां रह के वो सुधर जाए, सुधरने के बाद फिर वो वापस समाज में आके अच्छा नागरिक बन के रहे सबके बीच में। और एक कारण से दंड दिया जाए, दंड देना है ठीक है, दंड दे दो ना, पर उसको उसी स्थान में रहने दो, अलग स्थान में क्यों ले जाते हो उसको।
बाकी पॉपुलेशन पे उसका गलत असर।
हाँ, जब तक वो पूरी तरह से नहीं सुधर जाए, उसके अंदर वही प्रवृत्ति रहे, तो फिर से वो उत्पाद करता रहेगा, फिर से बाकी जो अच्छे नागरिक हैं उनको कष्ट देता रहेगा। तो अन्य नागरिक जो कि कायदे कानून का पालन करते हैं उनको कष्ट ना हो, इसकी वजह से उनको बचाए रखने के लिए इसको अलग स्थान में रखा जाना पड़ता है, रखना पड़ता है, वो जेल होता है। तो दंड देने के और दंडित व्यक्ति को अलग स्थान में रखने के पीछे ये सब कारण होते हैं। इसलिए आध्यात्मिक जगत में भी लोगों को दंडित किया जा सकता है ना, लेकिन वो उपयुक्त स्थान नहीं है दंड देने के लिए, वो तो प्रेम का स्थान है, सेवा का स्थान है। ऐसे स्थान में सब दंडित कर रहे हैं, पूरा वातावरण खराब हो जाता है वहां का, है कि नहीं। वहां आनंद प्रेम सेवा का वातावरण बिगड़ना नहीं चाहिए, इसलिए अलग स्थान बनाया गया। उस स्थान को भौतिक सृष्टि कहते हैं, जहां ये सारे जितने भी गुनहगार हैं सबको यहाँ पे भेजकर दंड दिया जाए। यदि भौतिक सृष्टि में कोई व्यक्ति कहे मैं तो दंडित, मैं तो गुनहगार नहीं हूं, तो आप क्या जवाब देंगे?
आप भौतिक जगत में है यही साबित करता है कि आप दंडित
हैं। हाँ, आप गुनहगार है, आप भौतिक सृष्टि में है यही प्रमाण है कि आप गुनहगार हैं। हाँ, कोई जेल में कैदी व्यक्ति पूछेगा क्या सबूत है कि मैं गुनहगार हूँ, भाई तुम जेल में हो यही तो सबूत है, नहीं तो तुम जेल में क्यों होते। हाँ, बाहर सबकी तरह रहते, तुमने कुछ बड़ा गुनाह किया इसके लिए तो तुमको डाला गया ना इधर। तो हम प्रमाण क्या है कि हम गुनहगार हैं कि हम यहाँ पर हैं भौतिक जगत में, और ये भौतिक जगत में आके हमको दंड मिलता है। दुर्गा देवी हमको क्या देती है दंड? त्रिशूल से क्या करती है? त्रिविध क्लेश, तीन प्रकार के क्लेश से हमको प्रहार करती रहती है। कौन से है तीन प्रकार के क्लेश? कौन समझाएंगे तीन प्रकार के क्लेश कौन से हैं?
आदि भौतिक क्लेश, आध्यात्मिक क्लेश और आदिदेविक क्लेश।
क्या मतलब इनका?
आदि भौतिक क्लेश और ये हमारा हमारा दूसरों से हमको होने वाला
क्या? दूसरों से होने वाला कष्ट, कोई उदाहरण?
हमको मॉस्किटो
मच्छर काटता है, सांप डस देता है कि नहीं। तो ये अधि
भौतिक।
फिर
आध्यात्मिक क्लेश,
आध्यात्मिक क्लेश
हमारा मन, हमारा मन से हम विचलित होकर हमको क्लेश उत्पन्न होता है।
मन से भी क्लेश उत्पन्न होता है कि नहीं, कि अरे ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। और शरीर से भी,
शरीर से
भूख लगता है, कष्ट होता है कि नहीं, भूख लगने से बीमारी हो जाता है। और
आदिदैविक,
आदिदैविक मतलब
हमारा पर्यावरण से हमको होने वाला,
प्रकृति में होने जाए, बहुत गर्मी हो गया, बहुत ठंडी हो गया, बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, अकाल पड़ गया, है ना, ज्वालामुखी हो गई, ये सब प्रकृति के द्वारा कष्ट दिए जाते हैं। तो दुर्गा देवी वो जेल के अधिकारी व्यक्ति की तरह है। जो जेल का अधिकारी व्यक्ति होता है, जो नेत्र, जो अधिष्ठाता होता है, उसका क्या काम होता है?
दंड देना।
ये देखना कि जितने भी गुनहगार अभी यहाँ बंदी हैं वो भाग ना जाए इधर से, पहली बात। हाँ वो भाग जाएंगे तो उसको दंड मिलेगा कि कैसे भाग गए ये लोग, तुमने ठीक से रखा नहीं उसको। हाँ, और दूसरा काम रहता है कि जब वो जेल में है, ऐसे नहीं कि उसको आराम का जीवन जीने के लिए व्यवस्था की, उसको सोफा और टीवी और आराम से पिज्जा विज्जा खाने के लिए व्यवस्था करना, ये नहीं। जब है तो उसको कष्ट मिलना चाहिए, उसको एक पिंजरे में बंद करना है, फिर उसको तो वो मार के पत्थर तोड़ने का सेवा कुछ करना पड़ता है, दंड देना पड़ता है। और कोई व्यक्ति बोलेगा, अरे ये पुलिस का अधिकारी कितना क्रूर व्यक्ति, देखो सबको बंद करके रखा इधर और पत्थर तोड़ने का सेवा देता है, ये करता है, तो वो है क्या क्रूर? वो बेचारा अपना नौकरी कर रहा है ना, वो तो अपनी सेवा कर रहा है, वो क्रूर व्यक्ति नहीं है। लेकिन उसको अच्छा भी नहीं लगता होगा भले, लेकिन क्या करे, उसका सेवा है सारे समाज के भलाई के लिए, ऐसे आवश्यक है, इसके लिए उसको करना पड़ता है। उसी तरह से दुर्गा देवी वो कष्ट देती है सबको, इसके लिए नहीं क्योंकि वो बहुत क्रूर है, दुर्गा देवी बहुत दयालु है, ये उसके दया का एक रूप है। दुर्गा देवी कौन है? ये माँ है, माता, अम्बा, अम्बा देवी, मुम्बा देवी, अम्बा है ना, अम्बा वैष्णो देवी, उत्तर में क्या बोलते हैं? जय माता दी। बंगाल में क्या बोलते हैं? दुर्गा माँ, काली माँ। यहाँ भी अम्बा देवी बोलते हैं इस भाग में, है कि नहीं, अम्बाबाई मंदिर। तो दुर्गा माँ है, माँ कभी बच्चे को डांटती है कि नहीं, डांटती है कि नहीं बच्चे को कभी, माँ डांटती है ना। हाँ, तो क्या इसका मतलब है कि माँ एकदम क्रूर हो गई और माँ जानबूझ के बच्चे को कष्ट देती है ताकि वो क्रूर होना चाहिए, दंड देना चाहिए? नहीं, ये माँ जब दंड देती है बच्चे को तो माँ की कृपा है बच्चे के ऊपर, ताकि बच्चे को गलत आदत न लग जाए, ताकि बच्चा सही मार्ग पे चले। हाँ, तो ये सब कृपा होती है। तो उसी तरह से जितने भी प्रकार के दंड अधिकृत रूप से दिए जाते हैं, सही दंड दिए जाते हैं, सही व्यक्ति को दिए जाते हैं, सही तरह से दिए जाते हैं, वो दंड देने वाले व्यक्ति की कृपा होती है वास्तव में। परंतु दंड देने वाले व्यक्ति को भी योग्य होना चाहिए, वो भी गलत कारण से गलत व्यक्ति को दंड दे तो वो अन्याय हो जाएगा। तो जब दंड देने वाला व्यक्ति अयोग्य हो जाता है और वो कोई अयोग्य कार्य करता है, तो ऐसे दंड देने वाले व्यक्ति को भी दंड मिलना चाहिए, वो भी दंडनीय हो जाता है। तो दंड देने वाला व्यक्ति भी दंडनीय हो सकता है। और ये भौतिक जगत में ऐसे देखते हैं कि कभी कभी पुलिस ऑफिसर जो होते, अधिकारी होते हैं, वो भी कोई गलत काम कर बैठते हैं, उनको भी जेल में भेजा जाता है। फिलहाल ही एक बड़ा खबर आया अखबार में कि किसी एक प्रांत में, मध्य प्रदेश में, जो सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी उस प्रांत का, सबसे ऊंचा मध्य प्रदेश का नंबर एक पुलिस अधिकारी, मध्य प्रदेश से हो ना, तो सबसे जो ऊंचा पुलिस अधिकारी है, उसने अपने पत्नी को मारा और ये वीडियो पे आया, किसी ने उसका वीडियो लिया और सब जगह उसको भेज दिया। तो अभी सब जगह आया, सबसे बड़ा पहला पुलिस अधिकारी अपने पत्नी को मार रहा है, तो सबने देखा ये कितना मार रहा है, बहुत चिल्ला रहा है, मार रहा है, पत्नी भी चिल्ला रही है, मुझे कोई बचाओ बचाओ करके। तो जब बाहर आया पब्लिक में, सब लोग इंटरनेट पे देखने लगे, तो फिर सबसे पहले मुख्यमंत्री के हाथ में आए, भाई तुम्हारा आदमी है, उसको दंड देना पड़ा। सबसे बड़ा पुलिस कौन होता है दंड देने वाले होता है ना पुलिस। अब पुलिस का आदमी ऐसे करे तो फिर क्या करना चाहिए, उसको दंड मिलना चाहिए। तो मुख्यमंत्री ने उसको दंड दिया। ये सो दंड देने वाले अधिकारियों की भी एक परंपरा होती है, श्रृंखला होती है, या एक क्या कहते हैं स्तर होते हैं। अभी सड़क में जो हवलदार होता है वो भी एक स्कूटर वाले को पकड़ लेता है, हेलमेट नहीं पहना दंड दे दो, ठीक है। तो उधर से लेके वो कोई गलत काम करे तो उसके ऊपर जो सब इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर है वो उसको दंड दे सकता है, तुमने ऐसे क्यों किया, गलत आदमी को क्यों तुमने दंड दिया। इंस्पेक्टर कोई गलत काम कर सकता है तो कमिश्नर उसको दंड देगा, कमिश्नर कोई गलत काम करता है तो उसके ऊपर का अफसर बैठा है SP बैठा है, SP कोई गलत काम करता है उसके ऊपर कोई अधिकारी, ऐसे जो सारे प्रांत में सबसे ऊंचा एक अधिकारी, वो कोई गलत काम करता है तो उसके ऊपर मंत्री बैठा है, मंत्री कोई गलत काम करे तो फिर उसको अदालत में ले जाके अदालत में उसको दंड मिलता है, फिर न्यायाधीश भी कल जाके कुछ गलत काम करे उसको भी दंड भुगतना पड़ेगा। ऐसे हुआ पिछले साल में, एक कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश को ही जेल में भेजा गया क्योंकि उसने सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं माना। तो हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट बैठा है और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने गलती किया तो दूसरे न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम, वो बोल उनको दंड देंगे। तो चाहे कोई प्रधानमंत्री हो कोई मुख्यमंत्री हो, भारत में भी मुख्यमंत्री भी जेल भेजे गए हैं, अनेक देशों में प्रधानमंत्री को भी राष्ट्रपति को भी जेल में भेजा गया है। तो दंड देने वाले भरपूर पड़े हैं। जे ऊपर से नीचे सब लोग दंड देने बैठे इधर, है कि नहीं, सब लोग एक को दूसरा दंड देते रहता है, कोई छूट नहीं सकता, सब लोग यहाँ दंड के क्या है दंडनीय है, सभी लोग, कोई भी दंड गलत काम करेगा उसको दंड मिलेगा, एक नहीं तो दूसरा व्यक्ति दंड देता रहेगा। तो कोई बच नहीं सकता, ये भौतिक साधारण भौतिक जगत में भी हम साधारण उदाहरण दे रहे हैं दैनिक जीवन का, इस दैनिक जीवन में भी हम देखते हैं कि कोई छूट नहीं सकता है। और अंततः मनुष्यों के दंड से छूटेगा तो प्रकृति के दंड से छूटेगा नहीं। ऐसे हो सकता है और होता भी है कि कई पुलिस के चंगुल से छूट जाते हैं, भाग जाते हैं, कोई बहुत बड़ा काम गुनाह करते हैं वो किसी दूसरे देश में जाके छुप जाते हैं, उसी देश में कहीं तो भी छुप जाते हैं, हो भी सकता है। परंतु प्रकृति के दंड से, भगवान के दंड से कोई नहीं छूट सकता है। अच्छा राजा का कर्तव्य होता है कि वो दंड दे। यदि राजा दंड नहीं देगा किसी गलत करने गुनाह करने वाले आदमी को तो राजा ही स्वयं दंडनीय हो जाएगा। तो दंड नहीं देना ये गुनाह है, दंड देना ये गुनाह हो जाता है। आजकल अभी मृत्यु दंड ये एक विवाद का विषय हो गया है कि मृत्यु दंड देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। अभी समस्या ये है कि गलत आदमी को मृत्यु दंड दिया तो क्या होगा, एक बार मृत्यु दंड दे दिया और बाद में पता चला कि गलत आदमी को दिया, फिर तो कुछ नहीं किया जा सकता है ना। इसलिए मृत्यु दंड देने में समस्या सबसे बड़ी ये है कि कलयुग में लोगों की बुद्धि उतनी तीव्र नहीं है सच को ढूंढ निकालने के लिए, और जो साक्षी आते हैं वो भी उल्टा पुल्टा बोल देते हैं, जानबूझ के कोई गलत साक्षी दे देता है, गवाह दे देता है किसी के, क्योंकि उनका अपना कुछ उद्देश्य रहता है। कितनी बार ऐसे हो जाता है, और कभी कभी सबके सामने किसी का खून करने के बाद भी साक्षी आने के देने के लिए लोग डरते हैं। क्योंकि फिर ये गुंडा आदमी फिर हमारा बाद में छूट के ही हम हमारी हत्या करेगा, परिवार की हत्या करेगा, बहुत बार होता है ऐसे। तो इस तरह से लोग कभी कभी, अभी हुआ फिलहाल, एक बहुत बड़ा गुंडा था कहीं, तो उसको पकड़ने के लिए उसने पुलिस को खबर मिली कि इसलिए और कुछ करने वाला है, तो लोग उसको पकड़ने के लिए, पुलिस पकड़ने के लिए गई, लेकिन इस गुंडे के आदमी बैठे थे रात के समय और उन्होंने पुलिस के ऊपर गोली चलाई, कई पुलिस लोग मर गए। अब पुलिस को गुस्सा है कि हमारे आदमियों को मारा तुमने, तो उसके पीछे पड़ गए। और इसका इतिहास क्या था कि इसने एक आमदार को कई साल पहले पुलिस स्टेशन के अंदर मारा था, घुस के उसको पीटा था पब्लिक में, और वो आमदार भागते हुए पुलिस स्टेशन के अंदर गया, ये गुंडा पुलिस स्टेशन के अंदर जाके पुलिस के सामने सबको मारा, और अदालत में कोई साक्षी देने के लिए तैयार नहीं, पुलिस भी नहीं, इसलिए वो छूट गया क्योंकि साक्षी नहीं। और यही आदमी था बाद में जिसने मारा। तो अभी क्या हो गया, अभी वो भाग गया वहां से, उस जगह से भाग गया और दूसरे प्रांत में जाके छुप गया, उसके पत्नी के मायके में जाके वो छुप गया। तो उधर से खबर मिली कि ये आदमी इधर है, तो वो प्रांत के पुलिस अधिकारी उसको लेने के लिए इधर आए, इस प्रांत के पुलिस अधिकारियों का सहयोग मिला, फिर उसको गाड़ी में बांध के लेके गए। अब लेके गए तो रास्ते में जैसे ही वो उस प्रांत में आए वापस, गाड़ी पलट गया, ऐसे बोलते हैं गाड़ी पलट गया और ये आदमी भागने को गया, और फिर ये आदमी ने ही पुलिस के ऊपर आक्रमण किया, उनका बंदूक छीनने का प्रयास किया, और आत्मरक्षा में पुलिस ने ऐसा हो गया तो दंड इस प्रकार से भी कभी कभी मिलता है। हमारे कलयुग में दंड देने की प्रक्रिया इतनी उलट हो गई है, किसको क्या करे क्या और एक बार जब उसी प्रांत में कुछ ऐसे गड़बड़ हुआ तो किसी दूसरे व्यक्ति ने बोला, कोई चिंता नहीं, ये गाड़ी पलटने वाला राज्य है, यहाँ पे सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम चिंता नहीं करो। अदालत से भी छूट गया तो भी गाड़ी उसकी पलट जाएगी तो। कलयुग का ऐसे है। वो तुलसीदास का एक कुछ है, वो चोर को डाकू, कलयुग है तेरी क्या है वो, कलयुग तेरी तमाशा, क्या कलयुग तेरी तुलसीदास कहते हैं, वो प्रभुपाद जी ने एक बार बोला था, धन्य हो तुलसी की कभी चोर को, चोर छूटे और संत को मिले दंड, ऐसा तात्पर्य मैं बोल रहा हूँ, वो श्लोक याद नहीं आ रहा है उनका दोहा जो है, कि साधु को जो निष्पाप है उसको दंड मिल जाता है, चोर छूट जाता है, धन्य कलयुग तेरी तमाशा, ऐसे धन्य कलयुग हो, आपको धन्य हो, आपके ये समय में ऐसे ही होता है, हंसी भी आती है रोना भी आता है, ऐसे तुलसीदास बोलते हैं कि कलयुग में ये दंड देने की प्रक्रिया और ये जो न्याय की प्रक्रिया है इतनी उलट गई है कि गलत आदमी को छूट मिल जाता है और बेचारे किसी निष्पाप मासूम व्यक्ति को दंड मिल जाता है, ऐसे सब कलयुग में होता है। परंतु पहले के युगों में दंड देने की प्रक्रिया, न्याय की प्रक्रिया सही होती थी, क्योंकि राजा बड़ा सही होता था, राजा भी धार्मिक होता था, निष्पाप होता था, हाँ, और प्रजा भी ऐसे होती थी, और राजा भी इतना शूरवीर होता था कि वो डरता नहीं था। प्रजातंत्र नहीं था कि आज किसी को दंड दे दिया तो कल हमको चुनाव में वोट नहीं मिलेगा, ये सोच कर नहीं करता था। कभी कभी हम देखते हैं वेन के संबंध में भी, हम देखते हैं अपने महाराज अंग ने अपने पुत्र को भी दंड दिया। तो ऐसे होता है राजा। आजकल के राजनीति में क्या होता है, किसी मंत्री का लड़का पकड़ा जाता है तो उल्टा पुल्टा करके उसको पुत्र को छुपा देगा, हालांकि वो पुत्र की गलती है। परंतु पहले के जमाने में ऐसे नहीं होता था। बड़ा राजा भी देखता था कि मेरे लड़के ने गलती किया, उसको दंड देते थे वो। तो उस तरह के ऐसे राजा हुआ करते थे, आदर्श राजा हुआ करते थे, जो दंड देते थे, दंड देने में हिचकिचाते नहीं थे। यदि वास्तव में किसी ने गुनाह किया है और वो परीक्षा करके देखते थे कि वास्तव में इसने किया कि नहीं किया, गलत आदमी को नहीं दंड देना चाहिए। परंतु यदि साबित हो जाता है कि इसने दंड किया तो फिर उसको दंड देने में हिचकिचाते नहीं थे, भले वो कोई भी क्यों ना हो, पुत्र भी क्यों ना हो अपना। परंतु कभी कभी ऐसे राजा ही गलत निकला, जैसे वेन के साथ हुआ। वेन का बात हो रहा है ना यहाँ पे, जैसे राजा वेन के साथ हुआ तो फिर उसको कौन दंड दे। तो भगवान की व्यवस्था ऐसी है कि दंड देने वाले के ऊपर भी कोई और बैठा है जो उसको दंड देगा। कोई भी दंड से छूट नहीं सकता है। वास्तव में राजा होता है नारदेव, जो देव होना, देव का प्रतिनिधि, भगवान का प्रतिनिधि होता है। मूल रूप से जो दंड देने वाले व्यक्ति कौन है, भगवान है। अन्य जितने भी दंड देने के लिए अधिकारी होते हैं वो सब भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। जब माता पिता अपने बच्चे को दंड देते हैं वो वास्तव में भगवान का प्रतिनिधित्व करके बच्चे को दंड देते हैं। गुरु जब शिष्यों को दंड देता है, देते हैं, तो वो भगवान का प्रतिनिधित्व करके शिष्य को दंड देते हैं। जब पुलिस, राजा आदि वो दंड देते हैं तो भगवान का अंततः प्रतिनिधित्व करके वो दंड देते हैं। ऐसे होना चाहिए, ये वैदिक पद्धति है। परंतु जब दंड देने के लिए जिनकी जिम्मेदारी है वही गलत काम करते हैं तो फिर उनके लिए भी कोई व्यवस्था है दंड देने के लिए। तो राजा जो राज्य में सबसे ऊंचा अधिकारी होता है दंड देने के लिए, वो ही कुछ गलत करे तो उसके लिए ब्राह्मण होते हैं, उसको काबू में रखने के लिए ब्राह्मण होते थे पहले। और वेन को ऐसे दंड देने के लिए ब्राह्मणों ने दंड दिया, केवल अपने हुंकार से, अपने शाप से उन्होंने वेन की हत्या कर दी। वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच में जब कुछ मतभेद हुआ और विश्वामित्र मुनि ने आक्रमण किया अपने शत्रु, अपने सैनिकों के द्वारा वशिष्ठ मुनि के ऊपर, तो वशिष्ठ मुनि ने केवल अपने हुंकार से, हुंकार मतलब ऐसे करके उस सारे सैनिकों की हत्या कर दी। और ये विश्वामित्र राजा तो आश्चर्यचकित हो गए, अरे मेरे पास इतने सैनिक और अस्त्र शस्त्र, और मैं सोच रहा था मैं इतना बलवान हूँ, और ये मुनि ने केवल हुंकार से मेरे सारे सैनिकों को खत्म कर दिया, तो धिक्कार हो मेरे क्षत्रियत्व को, धिक्कार हो मेरे राजपद को, अभी मुझे राजपद नहीं चाहिए, मैं भी ब्राह्मण बनूंगा, ऐसा शक्ति मैं पाना चाहता हूँ। तो उस समय के ब्राह्मण ऐसे होते थे, आजकल के ब्राह्मण की तरह नहीं, उनको शक्ति होती थी। यहाँ क्या लिखा है, ब्राह्मण इतने शक्तिशाली थे कि उनके शाप से लोग तुरंत मर जाते थे। आजकल ब्राह्मणों का आशीर्वाद नहीं चलता चलता है और शाप भी नहीं चलता है, क्योंकि ब्राह्मणों में किसी भी आजकल वो शक्ति नहीं है। परंतु उस समय वेन के समय ऐसे विरला ही देखा जाता था कि कोई ऐसे बदमाश राजा निकलता था। आजकल विरला ही देखा जाता है कि अच्छा राजा कोई है। कितना फर्क हो गया। उस समय में अधिकांश राजा सब आदर्श होते थे, एक आध कहीं ऐसे दुष्ट मिल जाता था वेने जैसे। आजकल कलयुग में क्या है, अधिकांश सब दुष्ट हैं, एक आध कभी को अच्छा राजा मिल जाता है। तो उस समय वेन जैसा दुष्ट राजा आया तो ब्राह्मणों को वो शक्ति थी, उन्होंने उस राजा को दंड दिया। कैसे? मृत्यु दंड दे दिया। इसका इतिहास क्या आप जानना चाहते हैं महाराज परीक्षित? तो आगे बताने वाले हैं सब, अभी तक बताए नहीं ना, तो आगे चल के पूरा विस्तार में बताएंगे कि वेन राजा को क्यों ऐसा भयंकर ब्रह्मशाप का दंड दिया, वो भी मृत्यु दंड दिया। तो इसके इतिहास अभी फिर मैत्रेय मुनि सुनाएंगे विदुर को। तो ये तात्पर्य है, अंततः दंड देने वाले कौन? भगवान है। श्री राम के बारे में दंड या दंड देने वालों में से कौन भगवान गीता में क्या बोलते हैं?
यम।
ढूंढो भगवत गीता में श्लोक, कौन सा श्लोक है? दंड
यम।
हाँ मतलब
सभी जो दंड
देने वालों में से मुख्य दंड देने वाला मैं हूँ, या दंड देने की जो क्षमता है वो मैं हूँ। तो दंड देने की जो क्षमता है वो मुझसे आती है, चाहे वो राजा दे रहा हो, माता पिता दे रहे हो, पुलिस दे रहा हो, कोई भी दे रहा हो, वो आखिर मेरे प्रतिनिधि हैं। जैसे जब भगवान बोलते हैं बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि, कि बुद्धि मुझमें से आती है, बुद्धिमान की व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति की बुद्धि मैं हूँ, इसका मतलब है कि ये बुद्धि मेरी है, ये मेरी शक्ति है, उसको बुद्धि मेरे कारण से आती है। उसी तरह से किसी को दंड देने की क्षमता भगवान से आती है। यदि वो व्यक्ति बुद्धि का दुरुपयोग करता है, दंड देने की क्षमता का दुरुपयोग करता है, तो उसको स्वयं दंड मिलता है। तो ये ब्राह्मण भी आदर्श थे, इसलिए वो इस योग्य थे कि इस दुष्ट राजा को वो दंड दे सके। तो आगे चल के इसका खुलासा होगा कि महाराज वेन कौन थे और उन्होंने क्या ऐसे कार्य किए जिनके द्वारा उनको ऐसे दंड मिलना पड़ा। ठीक है, हरे कृष्णा।
भक्त पूछ रहे थे कि ऐसे इस भौतिक जगत में एक चौथाई जीवात्मा यहाँ रहते हैं, तीन चौथाई भौतिक आध्यात्मिक जगत में रहते हैं, तो इतने सारे जीवात्मा यहाँ पर क्यों आते हैं? भगवान द्वेष करके यहाँ पर क्यों आ जाते हैं? क्योंकि इच्छा में बहुत काफ़ी ज़्यादा संख्या रहती है, तो ऐसा वो पूछ रहे थे कि इतने सारे क्यों आते हैं, कि भगवान उनको पसंद नहीं करते हैं, अब इतने सारे क्यों
थोड़े बहुत ज़्यादा लोग जेल आजकल क्यों भरे पड़े हैं? जेल में सबसे बड़ी समस्या क्यों क्या है पता है? उनको जगह नहीं है, इसलिए पुलिस उनको छोड़ देती है। अरे कितने लोगों को जेल में डालेंगे, वहाँ जेल में जगह नहीं है, आदमियों की कमी है, सरकार का खर्चा बढ़ जाता है, इनको भी खिलाना पिलाना पड़ता है ना, वो सरकार के मेहमान बन जाते हैं ना, उनका सारा खर्चा सरकार को देना पड़ता है, उनको खिलाओ पिलाओ। कभी कभी गुनहगार जानबूझकर जेल के अंदर जाते हैं, क्यों पता है? क्यों? हाँ ना, आराम से मिलता है, मुफ्त में मिलता है, लेकिन और एक भी कारण रहता है, ये गुंडे लोगों में आपस की शत्रुता रहती है, एक गुंडा दूसरे को मारने का जाता मारते हैं ना, तभी बाहर जब गर्मी बहुत बढ़ जाती है अन्य गुंडों की, तो अपने जान को बचाने के लिए वो जेल में जाता है, क्योंकि अभी जेल में ही एक सुरक्षित स्थान है जहाँ मुझे मुफ्त में सुरक्षा अधिकारी मिलेंगे। नहीं तो अन्य गुंडों को मेरी रक्षा के लिए बहुत लोगों को रखना पड़ेगा, इनको खिलाना पिलाना पड़ेगा, फिर भी मृत्यु मेरी हो सकती है, लेकिन जेल में मैं सुरक्षित रहूंगा। तो गुनाह करने वालों की संख्या इतनी बढ़ जाती है कि जेल में भी समस्या है रखने के लिए। उसी तरह से ऐसे बद्ध जीवों की संख्या इतनी बड़ी है कि इतने सारे जीव हैं जो कि अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं, इसलिए उनको यहां भेजा जाता है।
तो हमेशा आते रहते हैं, जैसे यहां से कुछ जाते भी हैं तो फिर वो आते भी रहते हैं, कंटिन्यूअस चलता रहता है।
कम आते हैं, अनादिकाल से आए हैं ना, पड़े हैं, अभी जाने वाले बहुत कम हैं। तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो कम है, लेकिन जाते हैं।
चार युगों में कौन से युग में ज्यादा जू जाते हैं भगवान?
क्या लगता है?
सत्ययुग में नहीं।
और किसका कोई मत?
कलयुग।
देखो चार ही उत्तर हो सकते हैं या पांचवा भी हो सकता है, छठा भी हो सकता है। देखो ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर है। सत्ययुग में भले वो इस योग्य होते हैं भगवान के धाम में जाने के लिए, ऐसे हो सकता है, परंतु कलयुग में अभी हमको चैतन्य महाप्रभु का कृपा है, वो सत्ययुग में नहीं मिलता है। तो ऐसे घोर कलयुग में हम जैसे साधारण लोग भगवान के धाम को जा सकते हैं चैतन्य महाप्रभु की कृपा के कारण? तो हो सकता है जिस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु में आते हैं तो उस कलयुग में सत्ययुग से भी ज्यादा लोग चले जाएंगे भगवान के धाम, हो सकता है। केवल नाम संकीर्तन करके, केवल गोकुलधाम में रह के जा सकते हैं वापस। तो ठीक है, अभी प्रसाद के लिए जाते हैं। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।